जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
ॐ शांति 1962-63 लिखी एक किताब है एस्केप फ्रॉम अल्केट्रेस अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रिजन एक कारागार था बीच में वो जेल था और चारों तरफ समुद्र ठंडा पानी और जो दुर्दांत अपराधी थे, जिनको लंबे समय तक सजा सुनाई गई थी, अमेरिका के और बाहर के भी, उनको वहां भेजा जाता था और वहां से छूट पाना लगभग असंभव था। ऊंची ऊंची दीवारें थी, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पहरा, और वहां का जो वार्डन था वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस किताब में दिखाया है, एक अपराधी वहां प्रवेश करता है, मॉरिस, और वो बहुत मास्टरमाइंड है, शातिर। जिस दिन वो प्रवेश करता है उसी दिन सोचता है मुझे यहां से छूटना है। पहले ही दिन जैसे ही एंट्री करता है वो सोचता है यहां मैं ज्यादा नहीं रुकने वाला, और जबकि वहां जो पहले के कैदी है सारे पुराने, उन्होंने सबने उसको समझाया कि यहां से तो अब लाश ही जाएगी, सोचना भी मत यहां से भागने की, क्योंकि आज तक इस अल्ट्राकैस से कोई भी नहीं भाग पाया है। पहले ही दिन वो वार्डन उसे बुलाता है और उसे पता होता है ये कौन आया है, नया कैदी, और उसको कहता है खबरदार, अगर भागने की तुमने सोची भी तो देख लेना, ये कोई अब तक के कारागार नहीं है जहां तुम रहे हो, ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा एक प्रिजन है कि जिसमें से कोई नहीं भागा। वो मॉरिस उससे बात करते करते ही वहां पर जो नेल कटर रखा रहता है उसको चुरा लेता है, और धीरे 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 प्लानिंग करता है, माइंड ही मन ही मन। वहां उसे कई सारे साथी मिलते हैं, एक तो मिलता है एक डॉक, जो डॉक होता है वो चित्र बनाता है, पेंटिंग करते रहता है, और वो पूछता है मॉरिस उसको कि तुम चित्र क्यों बनाते हो, वो कहता है इस कारागार में जिंदा रहने के लिए मेरे लिए एक ही सहारा है, ये कला, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, एक छोटी सी गलती होने के बाद 10-10, 20-20 दिन अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, बहुत अमानवीय वेदनाएं दी जाती है, ऐसा कठोर प्रिजन और कहीं नहीं है दुनिया में। दूसरा एक व्यक्ति मिलता है उसे, दोस्त लिटमस, वो भी उसे समझाता है कि यहां से मैंने भी कोशिश की थी भागने की पर नहीं भाग पाया। एक और व्यक्ति मिलता है, वहां लाइब्रेरी होती है, वहां सब कुछ होता है, लाइब्रेरी होती है, सिनेमा भी दिखाया जाता है, म्यूजिक क्लब भी होता है, एक टापू के अंदर सब कुछ है, खाना भी मिलता है, पर हाँ भाग नहीं सकते, दिन भर काम करते रहो, रात होते ही अपने छोटे से सेल में जाके सो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। एक और व्यक्ति उसे मिलता है इंग्लिश, जिसका नाम होता है, जो लाइब्रेरियन होता है, वहां किताबें होती है, वो समझ लेता है ये भागने का सोच रहा है, वो उसको भी समझाता है इंग्लिश, क्योंकि ये सारे लोग पुराने खिलाड़ी है जो जेल में लंबे समय से है, और जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब यहां से भागा नहीं जा सकता, पर ये तो अभी अभी आया है, और जिस दिन आया उसी दिन उसने सोच लिया कि मुझे यहां रहना नहीं है, और धीरे धीरे नए कैदी आते हैं, फिर और दो कैदी आते हैं, जॉन और क्लेरेंस। मॉरिस उनको पहचान लेता है, इससे पहले भी जब साथ में मिलकर चोरियां की थी तब किसी और प्रिजन में ये दोनों साथी थे, तीनों दोस्त बनते हैं, और एक चौथा ऐड होता है एलन। अब ये चारों मिलके योजना बनाते हैं यहां से भागने की, परंतु कोई बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, परंतु मॉरिस का संकल्प होता है कि मुझे छूटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कैद में मैं रहने वाला नहीं हूं। और वहां पर उसकी दुश्मनी भी होती है एक व्यक्ति से, वुल्फ नाम का एक होता है, जिसने बहुत सारे मर्डर किए हुए हैं। वहाँ उसको दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं, कुछ हितैषी भी मिलते हैं जो समझाते हैं कि ऐसा मत करना, चुपचाप रहो, या योजना को आगे बढ़ाते हो धीरे 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 धीरे। डाइनिंग टेबल से एक बार चम्मच ले लेता है और सुरंग बनाना चालू करता है बहुत ही शातिर तरीके से। मॉरिस उसको आग से उस चम्मच को औजार की तरह बना देता है। पहले नेल कटर होता है उससे बनाता है, और उसको पता चलता है कि इससे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर वो चम्मच चुराता है, फिर ऐसा धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें जमा करता है। छोटी छोटी फैन होता है एक, उस फैन को चुरा लेते हैं छोटे सा चारों मिलके, और उस फैन से और औजार बनाते हैं, और छोटी सी इतने सा वेंटिलेटर का एक जगह होती है अंदर, उसको रात भर कुरेदते रहते हैं और सिक्योरिटी घूमते ही रहते हैं 24 घंटे। एक पल नहीं है जब सिक्योरिटी नहीं, केवल जब उनकी ड्यूटी चेंज होने का टाइम होता है थोड़ा सा वो पीरियड होता है, उसमें तेज़ी से काम करते हैं ये लोग, और सुरंग बनाते हैं चम्मच से, और चीज़ें जमा करते हैं, टूथपेस्ट साबुन से मुखड़ा बनाते हैं, और नाई होता है जो कटिंग वाला, उससे बाल चुराते हैं और अपना पुतला बनाते हैं ताकि वो रखे, और चादर ओढ़ी हुई ताकि अंदर काम चालू रहे और सिक्योरिटी को लगे कि ये लोग सो रहा है ये व्यक्ति। बाल लगाते, चुराए हुए बाल और पुतला, साबुन, मिट्टी और टूथपेस्ट, क्योंकि यही अवेलेबल होता है। अब जो भी है यही है, और यहीं से छूटना है, कैसे भी करके छूटना ही है। बस संकल्प इतना शक्तिशाली है कि मुझे इस कैद में रहना नहीं है, और परिस्थितियां असंभव सी परिस्थितियां, कठिन से कठिन, और आखिरकार उनको शक भी होता है सिक्योरिटी वालों को, बार बार उसका कमरा और चेक करते हैं, पर वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक। ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ता, जैसे ही काम पूरा हो गया सब पैक कर देता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। और धीरे 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 जब सिक्योरिटी वालों को पता चलता है, वार्डन को, सोचता है कल मैं तुमको दूसरे सेल में भेज दूंगा, और चारों सोचते आज ही रात अंतिम रात है यहाँ की। बस जो रेनकोट उनके पास होते हैं वो भी रखते हैं अपने पास, क्योंकि यहाँ से तो बाहर निकल जाएंगे, परंतु समुद्र है बहुत बड़ा और ठंडे पानी वाला। तो धीरे धीरे वो सुरंग तैयार हो जाती है चारों की। जिस दिन छूटने का होता है, भागने का होता है, जो चौथा होता है एलन, वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं जाता है, और वो तीनों भागते हैं। वो वहां से वो जो सुरंग बनाते हैं उसमें बड़ी बड़ी करके खुद एक एक करके निकलते हैं। एक यूटिलिटी कॉरिडोर होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी कम होती है, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ और कुछ कुछ होता है, उसको तोड़ ताड़ के बाहर निकलते हैं, और धीरे 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 बचते बचाते, रात में सर्च लाइट भी होता है जो चमकती रहती है, उसको बचते बचाते वो देखते चौथा साथी तो आया ही नहीं, पर क्या करें, उसको छोड़ देते, अब रुकेंगे नहीं। रुकना नहीं होता है किसी और के लिए जब कैद से छूटना है, तो कि वो आए तो मैं छूटूं, और वो आखिरकार समुद्र तट पर पहुंच ही जाते। बहुत बड़ा टापू है और उसमें ये प्रिजन है अल्कैट्रास, और वहां आने के बाद वो अपने जैकेट निकालते और उसमें वो रेनकोट जो होता है ना उसमें हवा फूंकते, बहुत टाइम लग जाता है, और उसको बोर्ड बना के निकल जाते हैं तीनों। और फिर अगले दिन जब सिक्योरिटी वाले सारे आते, देखते अरे भाग गए, सायरन बजाते हैं, सब कुछ होता है, पूरा हो हल्ला होता है, मीटिंग्स होती है, ये होती है, और जो वार्डन होता है वो बहुत अहंकारी होता है, बहुत क्रूर। और उसने क्या किया था, वो जो व्यक्ति था ना डॉक, जो चित्र बनाता था, एक बार उसके कमरे में जाता है, बहुत सारे चित्र देखता है कि ये पेंटर है, और वो उसने वार्डन का भी चित्र बना के रखा है, तो इतना क्रूर होता है सारे उसके चित्र जब्त कर लेता है, तब वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है डॉक। वो अपनी चार तीन उंगलियां काट देता है खुद ही कि अब मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं। और वह अपने हर चित्र में एक फूल लगाता था जो आशा का प्रतीक था वहाँ जीने का। और जब ये तीनों जो भागने वाले चारों होते ने देखते हैं ना इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वो कहते हैं अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है, और दृढ़ होता है। और जो लिटमस होता है जो विरोध करता है वार्डन का, विरोध करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है लिटमस। और इन चारों का संकल्प दृढ़ होता है कि हमें यहाँ रहना नहीं। पर एन वक्त पर जो चौथा होता है एलन, अचानक डिप्रेशन आ जाता है और थोड़ी देर के बाद जागता है, पर तब तक ये तीनों भाग चुके होते हैं। और वो जब पहुंचता है तो अकेला नहीं कर सकता, वापस आ जाता है। जो वार्डन होता है वो देखता है आखिर ये लोग भाग गए मुझे चकमा देके। पर अभी अगर दुनिया को ये पता चल जाए तो हमारे प्रेस्टीज का क्या होगा प्रिजन का? तो कहते खबर छपवा दो कि ये लोग भाग गए और समुद्र के पानी में मर गए, पर उसे पता है कि वो भाग गए। और ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। 2025 2026 में भी वांटेड की लिस्ट में है मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस, जो तीन कैदी भागे थे। कई सारी मूवीज बनी हुई है इस पर। और अब आते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू पर। ये कोई कहानी नहीं थी खाली, इसमें कुछ और भी था। वो कैद ये संसार है, और कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती है जैसे संसार में आती है बचपन से ही वैराग इतना तीव्र है कि वो ये सोच लेती कि मुझे कहीं पर भी बंधना है ही नहीं, तभी से प्लानिंग चालू कर देती है। परंतु उस कारागार में ऐसे लोग हैं बूढ़े बूढ़े जो कहते कुछ नहीं हो सकता। वो कहते यहाँ से अब छूट नहीं सकते, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते। ये कौन सा कैद है? अपने ही मन के मन का कैद है। हम अपने ही किसी एक आदत के शिकंजे में कैद है। एक आदत, एक विकार, एक एडिक्शन, कोई विचारधारा, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई भोजन, कोई भोजन की कैद में बंद है, उससे छूट ही नहीं पाते जीवन भर। कोई रिश्तों की कैद में बंद है, छूट ही नहीं पाते उससे, कहीं ना कहीं कैद है। तो ये वो कैद है। और दुनिया हमें क्या जताती है, दिलात समझाती है कि छूट नहीं सकते। पर उसी कैद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कुछ और मार्ग ढूंढ लिया, जैसे कला। और जो वार्डन है वो अहंकारी मन का प्रतीक है। वो क्या कहता है कि कोई नहीं छूट सकता यहाँ से, कोई नहीं जा सकता है। वो कला को कुचल देता है, वो लिटमस को हार्ट अटैक हो जाता है उसकी वजह से, वो डॉक अपनी उंगलियां काट देता है उसकी वजह से, बाद में मर भी जाता है। परंतु चाहे कोई भी हो, जब मन में दृढ़ संकल्प है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ, टूथपेस्ट, सोप, अपना चेहरा। जब भाग जाते हैं और दूसरे दिन देखते ये तो सोए है, अंदर जाके देखते हैं तो अरे ये तो पुतला है, टूथपेस्ट और सोप और मिट्टी का बना हुआ, और जिसमें वो बाल जो है ना, वो चुराए हुए बाल नाई की दुकान के, और नाई का जो होता है उधर शॉप, ये सेल, वहाँ से चुराए हुए, सब जुगाड़ करके रखा हुआ, सबको चकमा दे के भाग जाते हैं। तो उसके 6 मास के बाद ये प्रिजन बंद हो गया। आज तो वो टूरिस्ट स्पॉट है, अगर अमेरिका में जाओ तो यहाँ लोग घूमने जाते हैं देखने के लिए क्या है, क्योंकि प्रतिष्ठा ही धूल में मिला दी ना। क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा 100-150 वर्ष से थी कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। अब ये जो 30 जाबाज अपराधी थे भाग के चले गए। तो ये संसार भी ऐसा ही एक कारागार, कारागृह है। और यहां से यदि छूटना है तो क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए। मुझे छूटना ही है, मुझे कैदी नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं छूट के रहूंगा, चाहे दूसरे कितना भी मुझे बताए कि यहां से कोई नहीं छूट सकता। यहाँ बातें चल रही है अपने मन की कमजोरी से, अपने मन की आदतों से छूटने की, विकारों से छूटने की बातें। ये वास्तव में कैद है। तो आज की मुरली के दो सिद्धांत है, एक तो है दृढ़ता और पहला है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह और दृढ़ता यदि है तो उड़ सकेंगे, नहीं तो नहीं। उमंग उत्साह और दृढ़ता है तो उड़ सकेंगे, नहीं तो नहीं। और दृढ़ता अर्थात चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उन्होंने नेल कटर से सुरंग बनाना चालू किया, चम्मच से सुरंग बनाना चालू किया, जो जो मिलता गया। उसे ये थोड़ी ना पता था कि क्या मिलेगा, बस संकल्प था कि मुझे यहां रहना नहीं है, मुझे छूटना है, इस बंधन से छूटना है, बस ये एक ही संकल्प था। जब संकल्प होता है तो अपने आप साधन जुटने लगते हैं, मार्ग खुलने लगते हैं। उनका क्या हुआ, मॉरिस का और जॉन और क्लेरेंस का, अभी तक पता नहीं, पर वो छूट गए। वो वार्डन को पता था पक्का, और वो जाते जाते उस तट पर एक फूल छोड़ के गए उसको बताने के लिए, तुमने उस डॉग का फूल कुचला था अपने पैरों के नीचे, ये उसका प्रतिशोध है। किताब में वो वार्डन फूल लेके हाथ में और कह रहा है कि जाओ खबर छपवा दो कि ये लोग डूब कर मर गए, झूठी खबर। तो सफलता के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता, संकल्प, वचन, प्रतिज्ञा, व्रत। उस दिन हमने सारे शब्द देखे थे, प्रण। दूसरा बताया उमंग, उमंग उत्साह। उमंग उत्साह और दृढ़ता, जब दोनों मिल जाए तो उड़ोगे और उड़ाओगे दूसरों को। अगला है स्वराज्य अधिकार, हमारे विचार हम पर हावी ना हो जाए। मन बुद्धि संस्कार की बात बाबा ने की है। तो आज चार होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क, एक अग्नि का चित्र बनाना है और जहां लिखेंगे उमंग की आग, फायर ऑफ एंथुसियाज्म। दो व्यक्ति काम करते हैं परंतु अंतर क्या है दोनों में, उमंग उत्साह का। एंथुसियाज्म मेक्स द डिफरेंस। एक में बिल्कुल उमंग नहीं है, एक में उमंग है, बस यही अंतर है सफलता और असफलता का। दूसरा होमवर्क है, एक पत्थर उठाना है और अपने टेबल पर रखना है आज दिन भर। क्या याद दिलाएगा वो, दृढ़ता। परंतु दृढ़ता अर्थात पत्थर समान कठोर बनना नहीं है, दृढ़ता तो आकाश समान अड़िग बनना है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा कारागार हो, ऐसी एक आदत जो पिछले 20 साल से हम जिसमें कैद है, छूट ही नहीं पा रहे उस आदत से, वो काम विकार हो सकता है, वो नींद हो सकती है या भोजन हो सकता है, छूटा जा सकता है यदि संकल्प हो तो। कुछ भी करेगा व्यक्ति फिर उसके विषय में, कुछ भी उसको साकार करने के लिए। चाहे लोग बार बार आके उसको समझाते थे मॉरिस को, सोचना भी मत, क्योंकि उसकी आंखों में देखते थे कुछ तो एक गड़बड़ है। वो जो वहाँ के जो कैदी थे ना, उनको डाउट तो आता था कि ये कुछ तो कर रहा है, ये साधारण नहीं है। उसकी आंखों में कुछ, क्या कहते हैं उसको, मिश्चीफ, एक शरारत दिखाई देती है, शरारती है आंखें, शरारती आंखें। उसको पूछते थे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं। पर कुछ कुछ जो बहुत बुजुर्ग वाले कैदी थे वो तो समझ जाते थे, परंतु वो उसको सहयोग भी देते थे कि हाँ चलने दो, अगर तुम छूट गए तो अच्छा ही है, हमने तो स्वीकार कर लिया है, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे, पर तुम अगर सोच रहे हो तो हमारा फुल सपोर्ट है, चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हारे बारे में। तो ऐसों की भी आवश्यकता होती है जो केवल सपोर्ट करे, और ऐसे भी होते हैं जो विरोध करने वाले हैं। सारे मिलेंगे कैदी, कैदी कई प्रकार के होते। तो एक पत्थर रखना है कहीं से कलेक्ट करके अपने टेबल पर, और उसको देखकर अपनी दृढ़ता को याद करना है। तीसरा क्राउन सिंबॉलिक, क्राउन और माय माइंड माय किंगडम, मेरा मन मेरा राज्य, मुझे अपने ऊपर अपने आप को वश में करना है। अभी अभी मुरली में सुना 15 नवंबर 2019 की, क्या सुना, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मुझे अपने आप को बदलना है, दूसरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। 80% 20% का हिसाब दिखा है, बताया बाबा ने, जो करना है खुद करना है, जो उठे सो अर्जुन, खुद परिवर्तन करना है। अर्जुन ने खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी युद्ध की, अर्जुन अकेला काफी था। एक विजुलाइज करना है कि मैं स्वराज्य अधिकार या आत्मनियंत्रण के सिंहासन पर विराजमान हूं, तो सभी आंखें बंद करेंगे। जब भी विजुलाइज करते हैं तो आंखें बंद करना है, योग के समय आंखें खुली रहे, पर विजुलाइजेशन जब होता है, देखो एक स्वर्ण सिंहासन है, गोल्डन थ्रोन, जो आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का, स्वराज्य अधिकार का सिंहासन है, इस तख्त पर मैं विराजमान हूं, मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है, मेरे विचार बुद्धि निर्णय शक्ति संस्कार वश में है, सब कुछ मेरे अधिकार में है, मैं अधिकारी हूं। तो आज के ये चार कार्य, तो क्या कहा, पढ़ लेते हैं। दृढ़ता उमंग उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों को विदाई। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेला स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना, स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना। अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे ही रहा, नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया। 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर बहन ओपीडी में आई थी, वो कह रही थी कि कुछ वो 16 कला के बारे में कुछ बताना चाहिए आपने। मैंने कहा क्या, तो बोला कहा हमने क्या कर दिया, एक गलती कर दी हमसे, एक छोटी सी गलती हो गई, जो 16 कलाएं थी ना उसमें जो एक कला है ना, सारा जीवन उसी में चला गया हमारा, पाक कला में। जो पाक कला है ना उसी में हमने पारंगत हासिल कर लिया। एक्चुअली मुझे लगा कि पाक कला भी तो एक कला है, वो भी आनी चाहिए, जब नए नए ज्ञान में आए थे, नए नए मतलब 40 साल पहले, जो 40 साल पहले जब ज्ञान में आए तो हमको लगा ये अलग अलग कला है, लिखने की कला, बोलने की कला, सुनने की कला, और फिर कहीं से पता चला पाक कला भी है, भोजन बनाने की कला, तो हमने सोचा कि क्यों ना नया नया रोज बनाया जाए, और उसमें इतने पारंगत हो गए कि शरीर का वजन इतना बढ़ गया और ढेर सारी बीमारियां आ गई। अभी क्या करना है वो बताओ। वो 15 कला कहाँ चली गई, तो वो पूछ रही थी ये कला कौन कौन सी है। हमने कहा कलाओं का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, किसी कर्त कला का 16 कलाओं का संबंध किसी कर्तव्य क्रिया से है ही नहीं, वो आत्मा के संपूर्णता की निशानी है, आत्मा संतुष्ट है उसको बिंदु रूप अर्थात 16 कला, तो गड़बड़ हो गई ना पूरी। ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो सारा दिन मर्ज कर, फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे, बीच बीच में चेक करो कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर लिया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेला इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना है और कोशिश कर कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करे कि हिम्मते बच्चे मदते बाप, तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, ये बहुत अच्छा है। रोज उठते ही कुछ ना कुछ पढ़ना है, सीधा अमृत वेला योग करने नहीं चले जाना है, कुछ तो पढ़ना है ताकि वो योग उसके आधार पर हो। या तो उठते ही मुरली का वरदान पढ़ लो एक, या तो अमृत वेले की ये किताब का आज जो यहाँ सिखा बोलने वाले वाले हैं वो पढ़ लो, या कुछ और, कुछ भी कुछ भी, ताकि वो पूरा अमृत वेला उसको दिशा मिल जाए कि इस दिशा में करना है। अमृत वेले जैसे रूहरियान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रूहरियान तो करते हो तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुताते हो, अपनी बात जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना। दृढ़ता में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, दृढ़ता उधर भी है दृढ़ता इधर भी है। मैं करके दिखाऊंगा, बदला लेके दिखाऊंगा, तुम आना अब देखता हूँ कैसे आगे बढ़ते हो। ये भी है निगेटिव वाली दृढ़ता, पॉजिटिव वाली दृढ़ता, तो दृढ़ता की शक्ति। दूसरी बात बताई, कई बच्चे अमृत वेले रूहरियान करते हैं, स्वराज्य अधिकारी करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा या प्रजा। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन में चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या साहूकार या प्रजा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य तीन कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो, मन संकल्प शक्ति बुद्धि निर्णय, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संकल्प। यह विशेष तीन कारोबार भी है, जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ साथ महामंत्री विशेष मंत्री होते, उनके सहयोग से राज्य कारोबार चलता है। सतयुग में मंत्री नहीं होगी लेकिन समीप के संबंधी साथी होगी, किसी भी में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीन स्व के अधिकार से चलते, इन तीनों पर स्व का राज्य है या इनों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को जब चाहो जहां चाहो वैसे संकल्प कर सकते हो, जहां बुद्धि लगाने चाहो वहां लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजा को भटकाती है, संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के। राज्य अर्थात डैश अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह विधि पूर्वक कार्य करते, वह आप कहो एक बात और वह करे दूसरी, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मन ही मन मनाभाव का है, योगी का बुद्धि योग कहते, तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं, वह कभी है कभी नहीं, कभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे प्रजा। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर अभी अधिकारी अभी वशीभूत हो जाते हैं तो आधा कल पूरा राज्य भाग का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या सुना, मैं राजा हूं, मैं अधिकारी हूं, सेल्फ कंट्रोलर, सब कुछ मेरे वश में है, इंद्रिया मेरे वश में है, मन बुद्धि संस्कार मेरे वश में है। अगर नहीं है, अगर गिर गए तो फिर उठो और उसको वश में करो। तो ये था चार बातें, पहला लिखेंगे एक अग्नि और वहां लिखेंगे फायर, क्या चाहिए आग, उमंग उत्साह की आग, मुझे छूटना है इस कैद से बस, चाहे बाहर ठंडा पानी हो बर्फ वाला पानी हो। और एक स्ट्रेटजी थी वो प्रिजनर्स को अंदर रखने की, उनको गरम गरम पानी दिया जाता था स्नान करने के लिए, क्यों, क्योंकि एक बार गरम पानी से स्नान करने की आदत पड़ गई तो बाहर जो पानी था वो कैसा था, चिल्ड वाटर, कोल्ड, आइस कोल्ड, कोई कैदी वहां से भागने की जरूरत नहीं करेगा, कौन कूदेगा पानी में, ठंडे पानी में, क्योंकि आदत किसकी पड़ गई है, गरम गरम पानी की। तो माया ने अपने सारे सब तरफ से बिछा के रखा है जाल, माया इतनी सब तरफ से फंसा के रखा है, और धीरे धीरे जेल में रहते रहते ऐसा बन जाता है कि यही सब कुछ स्वीकार कर लेते, फिर इससे छूटना ही नहीं है, ये नॉर्मल है, सब मिल रहा है ना। बाहर तो कितना कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ कैदियों को सब टाइम पे भोजन मिलता है, म्यूजिक म्यूजिक है, मूवी दिखाई जाती है, मेडिसिन मिलता है, फ्री में दवाइयाँ होती है, सब मिलता है, खाना पीना। परंतु एक है कि वो जैसा उनको बोला वैसा ही करना पड़ता है, वो बंधन में है, उनका अपना कुछ भी नहीं है वहां पर, आज इधर कल उधर, वो अपना कुछ भी नहीं है, बस एक ही दिनचर्या है, जैसा बोला बस वैसा करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं, खुद अपना कुछ भी नहीं है उनका। मोबाइल तो कहाँ होता है जेल में। हाँ, उनके रिश्तेदारों को 6 महीने में एक बार बात कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के लिए, बस वो एक छूट होती है थोड़ी। तो मुझे इस बंधन में रहना ही नहीं है, पहला अपने अंदर ये बंधन, ये एक संकल्प लाओ। तो फायर, दूसरा एक पत्थर दृढ़ता का प्रतीक अपने डेस्क पर रखना है, तीसरा एक क्राउन बनाना है जिसमें लिखेंगे मेरा मन और मेरा राज्य, ये मेरा राज्य है, और तीसरा विजुअलाइज करना है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, एक स्वराज्य अधिकार का स्वर्ण सिंहासन है, सेल्फ कंट्रोल का, आत्मनियंत्रण का, उस पर। अभी 89 की मुरली जो अभी अभी सुनी, सारी तो मुरली रिवाइज हो गई, फिर से एक बार रिवाइज कराते, क्या बताया बाबा ने, पहले इसको देख लेते। तर्क और हृदय, दो बातें, तर्क क्या करता है, दिमाग क्या करता है, विशाल दिमाग क्या करता है, वो सोचता है, वो बुद्धि चलाता है, वो गणना करता है, वो तर्क वितर्क करता है, वो तुलना करता है, तर्क लॉजिक रीजनिंग। परंतु तर्क बुद्धि परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंचती, परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का साधन है सच्ची दिल, क्योंकि दिल अर्थात करुणा, दिल अर्थात प्रेम। बुद्धि की सीमा है, बुद्धि सीमित है, हृदय विशाल है, हृदय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसमें तो प्रेम है, उसमें तो दया है, करुणा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। बुद्धि का हिसाब है, बुद्धि का तर्क है, बुद्धि की सीमाएं हैं, बुद्धि लिमिट है, बुद्धि की हद है, हृदय बेहद है। तो बाबा ने कहा कैसे पहुंच सकते हो, सच्ची दिल से, सच्ची दिल से, जो भी है उसको सच्ची दिल से सुना दो बस। तो पहला प्रश्न, परोपकारी आत्मा की ही किस पद की अधिकारी बन सकती है, सेंटर इंचार्ज, ज्ञान प्रवक्ता, तीर्थयात्री या राज्य अधिकारी? राज्य अधिकारी। बुद्धि का क्षेत्र है, बुद्धि का विस्तार, भाषण कला, जो पहली पूर्व वाली जो आत्माएं थी दादिया वन जी, उनके पास न भाषा थी न भाषण में माहिर थी। 1G 2G 3G 4G 5G, 1G अर्थात 1936 से 50 तक, 2G अर्थात 50 से लेके तो 69 तक, ब्रह्मा बाबा जब तक थे, ये सेवा के महारथी। उसके बाद में आए 3G, 69 से लेकर तो 2007 तक ले लो, वो सारे 3G। फिर आए 4G, 2007 से लेके जब तक बाबा आते थे 17 तक, और फिर है 5G, ऑनलाइन डाउनलोडेड चिल्ड्रन, जूम बेबीज, फेसबुक बेबीज, डिजिटल चिल्ड्रन, बहुत एक्सपर्ट है ये सारे, ये डिजिटल चिल्ड्रेन है बाबा के, जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को कभी देखा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं, और इनकी स्पीड बहुत है, ज़्यादा फास्ट है। पहले पूर्व वाले की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, क्या था पहले पूर्व वालों का, भाषण की कला, भाषण में प्रवीणता, बड़े बड़े उदाहरण, सच्ची दिल की आवाज़। उनकी क्या थी, सच्ची दिल की, दादियों के पास ना भाषण कला थी ना भाषा की कला थी, क्या था, बस एक सच्ची दिल की आवाज़ थी, उसी ने काम कर दिया। मुझे बदल के औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, इसको कहते हैं हम सो सोहम, वाक्य ही गलत है, जब चिड़िया चुप गई खेत, जो ओटो से अर्जुन, किसको, मुझे बदल कर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ठेका किस बात का है, बड़ा भाषण देना, अनुयायी बनाना, ज्ञान सुनाना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परिवर्तन के लिए आज की दुनिया किसको अधिक महत्व देती है, सुनने को, लिखने को, सोने को, देखने को, दुनिया देख के देखना चाहती है, सुनने वाले बहुत है, सुनाने वाले बहुत है, वास्तव में परिवर्तन जो है शब्दों से नहीं ऊर्जा से होता है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसके शब्द परिवर्तन नहीं करते, वो जिस, अगर वो व्यक्ति उसको जी रहा है तो उसको देख के व्यक्ति परिवर्तित होते हैं, उसके भाषण से नहीं, बोल नहीं ऊर्जा परिवर्तित करती है। विशाल दिमाग, यह विशेषता जरूर है, इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात डैश बन सकते हैं। साफ दिमाग, दिलरुमा जीरो, बिंदु रूप, बिंदु रूप बन सकते हैं। किस पूर में सच्चे दिल वाले मेजॉरिटी थे? पहला पूर, दूसरा पूर, तीसरा पूर, वर्तमान पूर, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, पहला पूर। पहले पूर वालों की भाषा डैश थी, लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी, गुलाबी, फ्रेंच इंग्लिश, हाईटेक, शुद्ध हिंदी। गुलाबी भाषा। वर्तमान समय अनेक आत्माएं डैश के लिए इच्छुक है, पैसे, पद, संन्यास, उपकार। लास्ट प्रश्न, ज्ञान सुनाना, यह डैश की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। विशाल दिमाग, चतुर सुजान, गंभीरता, शौक। ज्ञान सुनाना ये कला है, भाषण देना एक कला है, उसका धारणा से कोई बहुत कनेक्शन नहीं है। कोई बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, भाषण दे सकता है, कहानियाँ सुना सकता है, कविताएँ, गीत, अलंकार, उदाहरण, ये सब कर सकता है, परंतु जीवन में कोई धारणा नहीं है। 8 बजे उठो और जाकर 9 बजे अमृत वेले पर पावरफुल भाषण दो, जिससे सारी तालियों में गूंज उठे पूरी सभा, जबकि खुद कभी अमृत वेला नहीं कर, पहले करते थे, और तब के जो भाषण तैयार किए हुए पॉइंट्स है वो अभी दोहरा रहे, और लोग अभी भी प्रभावित होते, परंतु खुद नहीं करते, क्योंकि भाषण तो एक कला है, भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए महारथी की परिभाषा भाषण देने वाला नहीं हो सकती कभी, भाषणा। तो ये थे 10 प्रश्न। आज की कविता किसकी है? विठल भाई। तो 10 प्रश्नों को फिर से एक बार मुरली को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अमृत वेले का जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है, फिर जो होमवर्क दिया जाता है वो करना है, और कल एग्ज़ाम भी है, ठीक है, 1988 की जो अव्यक्त वाणियाँ थी उस पर ओम शांति। नहीं, इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर बाकी काम है, खुद खुद अपना अपना दे दो।
ओम शांति। कविता पाठ श्रृंखला का आज 66वां डे है, तो ये कविता कवियों के कवि महाकवि परमपिता शिव बाबा और आप सभी कविगण और आदरणीय सचिन भाई जी के सम्मुख ये कविता हम समर्पित करते हैं। कवि कविता का शीर्षक है उलझनों के सिकंजे में ब्राह्मण जीवन। यानी कि उलझन ऐसा जाल है कि एक बार व्यक्ति फंस गया उस जाल में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसके आधारित कविता है। तो आज उलझनों के सिकंजों में उलझ रहा है ब्राह्मण जीवन, उलझ उलझ कर उलझ रहा पर समस्या न सुलझ रही। जब जीवन में आती समस्या संशय की तब हिल जाता है शिकंजा निश्चय का। कोई लाख सुनाए ज्ञान ड्रामा का पर मन संशय में उलझा है। आज उलझन के सिकंजे में उलझ रहा है ब्राह्मण जीवन। कभी मन में आती व्यर्थ की उलझन, कभी अपने प्रति, कभी औरों के प्रति, कभी स्वभाव में तो कभी संस्कार में, कभी ज्ञान में आती तो कभी ध्यान में आती, कभी कर्म में आती तो कभी धर्म में आती। आज उलझनों के सिकंजे में उलझ रहा है ब्राह्मण जीवन। उलझन ऐसा जाल है जैसा भूल भुलैया का खेल, उसी खेल में जो उलझे उसकी बुद्धि होती है फेल। जैसा दुर्योधन उलझा था माया दानव के माया महल में, और उलझी थी कई कई मंत्रा के मंत्र जाल में। उस घटना से घटित हुआ रामायण और महाभारत आज उलझन के सिकंजे में उलझ रहा है ब्राह्मण जीव। मीठे बच्चे प्यारे कहते शिव पिता ब्राह्मण बच्चे को, मीठे बच्चे प्यारे बच्चों उलझन के सिकंजे में कभी न फंसो। फंसना ही है तो फंसो, लेकिन प्रभु चिंतन के सिकंजे में फंसो, जिससे होती अपनी और अपनों के जीवन की आत्म उन्नति। आज उलझनों के सिकंजे में उलझ रहा है ब्राह्मण जीवन। छह ओम शांति।
भगवान मेरा साथी है,
भगवान मेरा साथी है।
वाह सच्चे साथी वाह, आपने कमाल कर दिया। वाह टीचर सदगुरु साथी बनकर हमको निहाल कर दिया।
वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है, वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है।
अमृत वेले देखा बाबा की गोद में बैठे हैं,
योग के समय दृष्टि देकर कराते हैं
भोजन के समय हाथ पकड़ कर खिलाते भोग,
टीचर बनकर मुरली द्वारा कराते हैं ज्ञान स्नान, माया का दरवाजा बंद होता है मिटता है अज्ञान। वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है, वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है।
कर्म योग में खुदा दोस्त बनकर हर पल सहयोग देते, जो काम कभी नहीं किया चंद मिनटों में हो जाते।
बाबा हर पल साथ है ये महसूस होता, अगर बाबा न होते तो हम कहाँ होते। वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है, वाह मेरा भाग्य आज भगवान मेरा साथी है।
कैसे लिखूं कविता जो दिया गया विषय बहुत बड़ा, हाथ पकड़ कर लिखवा दिया अच्छा लगा बाद में जब पढ़ा।
रात को जब सोती हूँ बाबा की गोद में अतिंद्रिया, सुख में भी झूलती हूँ बाबा के साथ में।